की बात करते हैं, जनवरी में अमेरिका में क्या हुआ था, आज आप देख लें वहां पे जो इलेक्शन में भी जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, क्रुकेड और वियर्ड जैसे लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं, पेशेंस लेवल इज जीरो इन G7 के कंट्रीज के बीच में, जमहूरियत का राग सुनने के हम कायल हैं, सिफर की जमहूरियत भी नहीं है।
देखिए $35 ट्रिलियन अमेरिका कोई, अगर आप हम उसे डेमोक्रेसी की कोई अच्छा मुल्क समझ रहे हैं तो आप अच्छी तरह देखती हैं कि जी वहां पे क्या हालत है। वो उनकी 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 सेनेट तक कंट्रोल्ड है, मतलब आप देखिए ना कि जी जिसकी सेनेट ने लिख के मैसेज किया हो ICJ के प्रोसिक्यूटर को कि हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और सारी दुनिया कह रही है कि, और हर रोज लिस्ट आती है कि उनका कौन सा कांग्रेसमैन कितने पैसे लेता है एपेक से। तो हम अमेरिका को कैसे कह रहे हैं कि ये मॉडल है डेमोक्रेसी का या किसी वैल्यूज के स्ट्रक्चर का? क्या क्या इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे?
उन्होंने बाद में सॉरी किया, उन्होंने कहा मगर आज हुकूमत है ना, आज बाय द वे उनकी बेस के ऊपर हमला भी हुआ है, उनके चंद एक फौजी जख्मी भी हुए हैं। आज अमेरिका ने आज ओपनली कहा है कि हम वी विल सेव आवर इंटरेस्ट, हम अपने इंटरेस्ट को सेव करेंगे बिकॉज उनकी आर्मी वहां पे है। बट अनफॉर्चुनेटली आशिर अजीम साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड, आई विश कि आप अपने वतन को भूलें मत, थोड़ा सा डिटेल में देखा करें, और लोग शायद चंद वो हकायक आपसे सुनना चाहते हैं जो आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं, मगर आप भी गदर कर रहे हैं, आप भी वो दिल से बता नहीं रहे।
नहीं जी देखिए, अगर कोई बहुत लेटेस्ट इशू होगा तो वो जाहिर है मुझे टाइम नहीं मिला होगा स्टडी करने का। अगर मुझे आप थोड़ा सा एडवांस में बता देंगे कि हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में प्रोग्राम में ये डिस्कशन करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके आऊंगा, और मैं
तो मतलब एवरी फ्राइडे मगर हम लेटेस्ट न्यूज को सर लाजमी कवर करना चाहते हैं आपके साथ।
देखिए वो अगर मेरे पास नहीं होगी वो नॉलेज तो फिर मैं वो नहीं कहूंगा, आई एम नॉट इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट कि अगर एक बात गलत होगी तो मैं उसको जबरदस्ती सही साबित
नहीं सर, मैं चाहती भी नहीं, मैंने आपको कहीं क्रॉस नहीं किया, मैंने सर आपको कहीं क्रॉस नहीं, और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कदरदान हूं, लोगों की कदरदान हूं, वी ऑल हैव स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बहुत शुक्रिया जनाब,
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड थैंक यू फॉर कंटिन्यूइंग मी टू हैव ऑन द शो इवन इफ वी मे डिसएग्री ऑन थिंग्स।
इट डजंट मैटर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी इन पाकिस्तान, मेरा खून जलता है। मैं कहती हूँ बाज़ लोग अपने लिहाज से बात करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि सुनना हमने सबको है, वी एग्री टू डिसएग्री बट वी गॉट टू लिसन ईच अदर। थैंक यू सर,
थैंक यू सो मच।
इजाजत दीजिए आशा अजीम साहब से बात, बात बातें नॉट नेसेसरीली कि हम किसी रिजल्ट की तलाश, एजम्पशंस में मत जाइएगा। हम दुनिया को देखते हैं तो किसी ने आज मुझसे बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा कि जी एक 500 साल पुरानी किताब है, उसका भी तर्जमा नहीं मिल रहा था, जब उसका तर्जमा मिला तो तब भी मिला कि दुनिया बस आखिरत के करीब है, बस सब क्यामत आने वाली है। ये 500 साल पहले की बात है, आज भी वही सूरत हाल है, दुनिया ने ऐसे ही चलते रहना, अल्लाह करे मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूं, हम में से हर इंसान अपने आप को दुरुस्त कर ले, और ये जो पैसा है ये इंसेंटिव ना हो। अभी दीजिए इजाजत, ताकत आप यकीन कीजिएगा, यहाँ ताकत के हसूल के लिए हर बंदा जलील करने और कराने के ऊपर तैयार है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक मेरा आपका अल्लाह हाफिज।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
6478724900। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ओंटारियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड। ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660.
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। सीआईबीसी ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनीग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 647-0241 6476902411।
क्या बात है, बाजार नजर आ रही है।
अबू जान, खुदा का वास्ते, गाड़ी से तो बेहतर एक गधा गाड़ी खरीदे, हर मोड़ पे घुस जाती है।
तो बच्चे परेशान क्यों होती हो? लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था,
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, 4 व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर, अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव, रिजोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
खाना हो तो आ जाओ शाहीन, शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजेदार चिकन टिक्के कबाब, बिरयानी, दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ व्हाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान 905-872-1100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, PR रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। canimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियात मौजूद है।
BMK proudly brings you Big Big Ring Durham Summer Fest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. The first ever open-air ghazal concert with a tribute to the legendary Jagjit Singh by Mozam Ali Khan. Enjoy free parking at admission, the sponsorship, booth booking and limited VIP tickets. Contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com.
मेरे नहीं गुजारा
तो मैं तुम्हारा।
खूबसूरत दांत, बाएतमाद मुस्कुराहट और बाएतमाद गुफ्तगू, आपकी और आपके खानदान की मुस्कुराहटों की जमीन। फिलिंग्स, क्राउन्स, ब्रिजेस, क्लीनिंग, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, फ्री कंसल्टेशन, दांतों की संभाल के लिए डॉक्टर पद्मजा, 310 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, 299-7466।
वेलकम बैक तमाम सामेईन जो 770 एएम डायल सुन रहे हैं और साजो आवाज प्रोग्राम पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ई आवाज टीवी पर भी जुड़े हैं। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और 6 बजे से लेकर तकरीबन 6:10 हो गए हमारी घड़ी में, तो 7 बजे तक जो है वो ये खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी शाजिया मलिक साहिबा, और उसके बाद 7 से लेकर 8:15 बजे तक फिर हम आप और बस हम और आप होंगे, और कौन होगा, मतलब हम में यानी मैं और शाजिया जी, हम का मतलब 2 लोग होते हैं। मैं क्लियर कर दूं ना, क्योंकि अक्सर जो है वो शाजिया जी कहती हैं हम एक होता है, नहीं हम 2 होते हैं। ठीक हो गया जनाब, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और आप सुन रहे हैं 770 एएम डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज, और अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहां आपको ये आवाज सही सुनाई नहीं दे रही, तो हम आपको एक नंबर देते हैं 6478724900 पर आप डायल करके क्रिस्टल क्लियर आवाज हमारी यानी रेडियो की आवाज आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 4166201778 हमारा नंबर है, हमारी वेबसाइट eawaz.com, यहां भी आप रेडियो सुन सकते हैं और टेलीविजन देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे तमाम एडवर्टाइजर्स के नंबर भी हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। चले जनाब, प्रेशर कुकर की जो सीटी है वो बज चुकी है और मुझे लग रहा है कि कुछ खबरें जो है वो गर्मा गर्म होंगी आज, तो सबसे पहले शाजिया मलिक साहिबा को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप?
थैंक यू वेरी मच आमिर, तुम कैसे हो? ठीक हो?
अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए।
बस बिल्कुल ठीक है। कल थैंक यू वेरी मच बहुत सारे लोगों को जो हमारी वो थी ना, एक हसीना थी हसीना
चली गई है।
शेख हसीना की जो हमने कल स्टोरी सुनाई, हाँ। लोगों को बड़ी पसंद आई, 2-3 लोगों ने फोन किया, जिसमें से मैं स्पेशली रियाज भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की, उन्होंने कहा हम सब लोग बैठ के सुन रहे थे और देख रहे थे तो हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, आप पसंद करते हैं। तो रियाज भाई ने कल भी मुझे कहा कि, और मुश्ताक साहब एक हैं उनका भी मुझे फोन आया, कहने लगे कि आप, मुश्ताक साहब कहने लगे आप कुछ और हमारी जो हसीना है उनकी स्टोरीज बताएं। अच्छा, और मजे की बात यह कि एग्जैक्टली उसके बाद रियाज भाई के साथ बात हुई, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा, उन्होंने कहा कि आप प्लीज एक हसीना थी जो है उसके और कुछ स्टोरीज बताएंगे। तो बिल्कुल जनाब,
हसीना है घर पे ना, इनका वेट कर रही है, इनको इस बात का अंदाजा नहीं है, ये आपको तो फोन कर करके ना
तो
स्टोरी
आपको सुनाएंगे। एक हसीना थी, एक हसीना थी, एक दीवाना था, तो आज दीवाना क्या कह रहे हैं उसका भी आपको बताएंगे।
ठीक हो गया,
क्या उम्र, क्या समा, क्या जमाना था, ये स्टोरियां आज आपको सारी सुनाएंगे।
ये वही तो फिल्म नहीं है जिसपे हाँ। आपने एक दफा कहानी सुनाई कि एक आदमी मर जाता है, पुरंजनम,
तो ये हाँ, तो बस वो चूंकि शेख हसीना उनका नाम है तो मैंने उनपे गाना लिखा है ना, या उनपे मैंने ये फिट कर दिया, एक हसीना थी, मैंने उनपे फिट कर दिया। आपको तो पता ही हम इनोवेटर्स हैं ना बड़े।
यहाँ देखे लॉट आई ऑब्जेक्ट,
अच्छा जी चलो,
ये इनोवेटर का वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा मुझे एकदम हिचकी आई।
अच्छा,
कि आपने कहा ना कि यार हम तो इनोवेटर हैं, नहीं नहीं सर, इसके ऊपर लिखे एम मिनू प्लेटर।
अच्छा, यानी गाना मैंने मैनिपुलेट कर लिया है? नहीं, मैनिपुलेट नहीं मैंने किया भाई, मैंने गाना इनोवेट कर दिया है, क्योंकि ये हसीना भी प्राइम मिनिस्टर कभी थी ना, तो बस इसलिए मैंने बोल दिया
कि हसीना थी, आपने जो है एक हसीना को उठा के दूसरी हसीना पे
फिट कर दिया,
वो फिट कर दिया।
तो एक हसीना थी। तो बस जनाब आज आपको हसीना के और भी कुछ किस्से सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने उस रिपोर्ट को कल पसंद किया। तो आज और बहुत सारे खुलासे हैं क्योंकि आज तो बेचारे जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं उनकी बड़ी असेंबली में उनको खींचा गया, उनको पूछा गया कि भाईजान ये क्या चल रहा है,
शुक्र किया
ये शुक्र क्या है, ये मुल्क में हर कोई इंडिया में मुंह उठा के कैसे आ रहा है, यू नो।
हालांकि अब अपोजिशन वो 400 के मुकाबले में 50 या 100 सीटें नहीं है,
नहीं है,
अब बराबर का।
तो उन्होंने कहा भाई ये जो कोई आ रहा है ये दीदी के साथ बड़ा प्यार है, ये चक्कर क्या है, दीदी हम ममता बनर्जी को कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, तो उनके साथ प्यार है कि इंडिया गवर्नमेंट का प्यार है, चक्कर क्या है, हर कोई मुंह उठा के हिंदुस्तान में आ रहा है। तो आज एस जयशंकर साहब को काफी खींचा, फिर उन्होंने जो है यानी खींचा क्या, जरा सवाल सवाल किया। एस जयशंकर साहब बड़े काबिल किस्म के इंसान है, आपको पता ही है। तो इंडिया का केस तो ऐसे धांसू तरीके से वो लड़ते हैं दुनिया में, तो जाहिर अपने मुल्क में भी उनको
भी अपना केस आज, लड़ते हैं।
आज भी उनको अपने मुल्क में मगर लड़ना पड़ गया वो केस जो है।
देखिए ऑपोजिशन के तो सवाल के जवाब देना पड़ेगा आपको।
हाँ, उन्होंने कहा जी कि ये
गया कि आपने मजे से जो है वो हर वो कहते हैं ना ग्राउंड खाली है बस गोल मारे जाओ,
गोल मारे जाओ। हाँ, तो अब वो गोलकीपर आके खड़ा हो गया सामने,
प्लेयर भी आ गया,
तो प्लेयर भी आ गया, तो अब वो घेर रहे हैं इनको, तो अब जो है वो खुलम खुला नहीं चल रहा। तो जनाब वो जो एक हसीना थी वो जो इंडिया पहुंच गई हैं, तो उनके बारे में आज उनसे भी बहुत सख्त सवाल किया। तो जनाब आज आपको बहुत सारी और भी स्टोरीज सुनाएंगे और आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हम बताएंगे, और जो है वी होप कि आपको फिर से जो है वो खबरों का मजा आए। तो बहुत शुक्रिया अगर आप ये सुनते हैं, वैसे तो मुझे लगता है 10 लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर आप लोग
नहीं 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 या अगेन आई
नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कोई सुन रहा है, लेकिन
देखिए आप मैं सुन तो नहीं सुन नहीं ना ये देखिए एक अब आपका सोशल मीडिया है उस पर अगर आपको कोई 10 लाइक लगता
है, 10 लाइक है टोटल, यानी सोनू निगम की तस्वीर मैंने लगाई हुई है उस पर 10 लाइक है।
फिर अभी जो आपने कहा कि यार अभी भी जो है वो 10 लोग नहीं सुन रहे होंगे, आप इस पर जो है ना वो जितनी चाहे बेड लगा लें, तकरीबन अगर आप अभी कह देना कि एक बात मैं कर दूं यार जरा इनको बता देंगे कितने लोग सुन रहे हैं,
10 लोग,
ये आपका टाइम खत्म हो जाएगा, कॉल खत्म नहीं होंगी।
हाँ, नहीं नहीं इतनी मुझे खुशफहमी भी नहीं है,
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ मैं आपको।
फिर आप टेक्निकल बंदे हैं, आपको ज्यादा पता है।
आप अगर अभी बोल दें, अगर मैं अभी अनाउंस करूँ ना कि शाहजे जी ने कहा है कि 10 लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, अगर मैं अनाउंस कर दूं तो आपका 8:15 क्या अगली सुबह 8:15 आ जाएगी, कॉल खत्म नहीं होगी।
पता नहीं अब आप कह रहे हो तो
मैं बता रहा हूँ
लेती हूँ, लेकिन
मैं बोल के देखूँ।
अच्छा नहीं नहीं
न्यूज
अच्छा,
निकल जाएगी आपकी।
हाँ न्यूज निकल जाएगी। असल में बात यह है कि हमारे पास आमिर बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी अब आ गए हैं। एक तो हमारे पास 5 गोल्ड टिकट्स आए हैं जी ग्लोबल G20
बताइए
है ना, तो आमिर उसका तो कॉम्पिटिशन तो आप अनाउंस करना, लेकिन मैं सिर्फ उनकी थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ कि 5 गोल्ड टिकट्स हमारे पास आए हैं और फ्राइडे तक हमने ये सारे टिकट देने हैं। इन टिकट्स की प्राइस जो है ये $5-5 वाले टिकट्स नहीं है जी, 50-100 इनकी प्राइस है क्योंकि गोल्ड टिकट्स हैं। हाँ, तो आपको जो है आमिर अब क्वेश्चंस बताएगा कि आपने कौन से क्वेश्चंस आंसर करने हैं वो आप है। और दूसरा जो आमिर ने आपको तरीका बताया था अफ्रीकन लायन सफारी का कि हमारा जो है टिकटॉक पसंद करें, हमारा इंस्टाग्राम पसंद करें और हमारी जो eawaz.com हमारी वेबसाइट है उसको अगर आप लाइक करेंगे, सिर्फ लाइक
यूट्यूब चैनल
और यूट्यूब हमारा जो चैनल है उसको अगर आप सिर्फ लाइक करेंगे, सिर्फ अपने लाइक, कोई पैसे
नहीं
देने,
कोई
सवाल जवाब नहीं,
सिर्फ
फ्री एब्सोल्युटली, बस आपने लाइक क्या करना है वो जो उधर ऐसे अंगूठा लगा
फॉलो कर
उसके ऊपर आपने वो फॉलो कर लें बस आप उसको, तो बस आपने टोटल ये करना है। और आप ये बहुत ढेर सारे अफ्रीकन लायन सफारी के भी $200 का ये पूरा गिफ्ट हैम्पर है क्योंकि इसके अंदर 2 एडल्ट्स के टिकट्स हैं और 2 बच्चों के हैं, तो ये ऑल टुगेदर $200 का है। तो ये जो हमारे पास 5 टिकट हैं ये भी जो है तकरीबन 250 के हैं, तो आप लोग
और ये फैमिली पास है,
नहीं ये जो
अच्छा,
टिकट है वो तो
अलग-अलग है, सिंगल्स भी ले सकते हैं,
सिंगल भी ले सकता है
और $50 उसकी वर्थ है,
उसकी वर्थ एटलीस्ट $50 है ठीक है। और ये जो अफ्रीकन लायन सफारी है इसमें लेकिन
इसमें थोड़ा कंडीशन ये कि आप एक पास फैमिली पास है,
फैमिली पास है क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना कि हम अब उसको स्प्लिट कर देंगे, 2 बड़ों को दे देंगे
हो जाएगा जाहिर, किसी 2 बच्चे कैसे अकेले जाएंगे,
अकेले कैसे जाएंगे। सो और क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत छोटी है
12 से 13 साल,
नहीं 3 से 4 से 5 से 6
12 साल तक
तो वो इस तरह, तो वो बच्चे नहीं जा सकेंगे अकेले, दैट्स वाई वी वॉन्ट टू गिव अ فیملی پیک. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اوکے, خبریں شروع کر لیتے ہیں عامر. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو ڈاکٹر فیاض قریشی. ڈاکٹر فیاض قریشی آپ کو پتا ہی ہے بہت زبردست ڈینٹسٹری کی سویدھائیں آپ کو دیتے ہیں, اور تین ان کے کلینکس ہیں. آپ جائیں ایک تو مسساگا میں, دو کلینکس ہیں, اس کا نمبر ہے 9052325678, اور ایک اسکاربرو میں ہے ان کا جو کلینک ہے وہ اس کا نمبر ہے 4167579999. سوری اگر میرے منہ سے ریسٹورینٹ نکلا, ریسٹورینٹ کلینک ہے ان کے, کلینک ہیں جی یہ, کلینکس ہیں. ٹھیک ہے. اور جناب چاندنی وکٹوریا بینکوٹ ہال, یہ بہت ہی زبردست ہے اور اچھی جگہ پہ لوکیٹڈ ہے, بہت ہی ایزی اس کا ایکسس ہے, 2935 ڈریو روڈ میں سے ساگا پہ. اگر آپ اپنے کوئی چھوٹے بڑے ایونٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کال کر لیں, اس کا نمبر ہے 6479653823. اور ویلج ٹیسٹ آن ٹیریوز لارجسٹ پاکستانی حلال بفے, اور ان کے بھی دو ریسٹورینٹس ہیں, اب ایک 4141 ڈکسی روڈ میں سے ساگا میں 9052323663, اور دوسرا اوکفل میں ہے ان کا, اور وہ ہے 2294 لیک شور روڈ ویسٹ کے اوپر, اس کا نمبر ہے 9052262294 کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم آپ کو جناب خبریں سناتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ کیلگری میں بہت زیادہ طوفان آیا ہوا ہے, بہت زیادہ وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں, اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹینس بال کے سائز کے جو ہیلز ہیں وہ وہاں پہ پڑے ہیں. انوائرمنٹ کینیڈا نے بھی کہا ہے کہ بہت سارا ڈیمیج جو ہے اس کے اندر آیا, تو لارج ہیلز ہیوی رینز جو ہیں وہ کیلگری میں آئے ہوئے ہیں. اتنا زیادہ یہ آیا ہے کہ جو کیلگری ایئرپورٹ تک ہے اس کو بہت ڈیمیج ہے. انوائرمنٹ کینیڈا نے بتایا تھا پہلے کہ یہ سیویئر جو تھنڈر سٹارمز ہیں یہ آنے والے ہیں, اور بہت پاورفل ونڈز جو ہیں وہ بھی چلیں گی. یہ جو ایئرپورٹ ہے اس کے اوپر, یعنی کیلگری انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کے اوپر ٹریولرز جو تھے گیٹ بی اور سی پہ, ان کو امیڈیٹلی ایویکیویٹ کیا گیا تھا جس وقت یہ بہت زیادہ طوفان آیا. ڈومیسٹک ٹرمینل جو تھا بلڈنگ کا وہ بند کر دیا گیا کمپلیٹلی ڈیمیج کی وجہ سے. انہوں نے جو کیلگری انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اپنے سوشل میڈیا پہ کہا ہے کہ جی ہم پانی آ گیا تھا تو ہم پانی کو صاف کر رہے ہیں, اور یہ جو ڈیمیج آیا اس کو اسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک ٹرمینل ہے اس کو بھی کلوز کیا گیا ہے انٹل فردر نوٹس. پیسنجرز کو کہا جا رہا ہے کیلگری میں کہ آپ اپنے, اگر آپ کی کوئی فلائٹس ہیں تو جانے سے پہلے ایئر لائن سے ضرور چیک کریں گے کہ آپ کی فلائٹ آن اسکیڈول ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ جو ہیلز آئے تھے بہت زیادہ, اس کی وجہ سے جو میجر روٹس ہیں لائک سٹونی ٹریلز اینڈ ڈیئر فوٹ ٹریل, یہ سارے فلڈڈ ہوئے ہوئے ہیں, اور ادھر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جو ڈرائیورز ہیں جب یہ طوفان آیا تو انہوں نے اوور پاس کے اوپر شیلٹر لینے کی کوشش کی, جو کہ ظاہر ہے کہ مشکل تھا ویسے تو, لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ گاڑیاں فار ایگزامپل روک لیں اور سائڈ پہ لگائیں, اور کیونکہ بہت ہی خطرناک قسم کا یہ تھا. سوشل میڈیا جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر دکھایا جا رہا ہے کہ جو لوگوں کے گزیبوز لگے ہوئے تھے وہ اڑ گئے, اور گاڑیوں کی جو کھڑکیاں تھیں وہ ٹوٹیں, اور بہت سارے جو ڈیمیج ہے وہ گھروں کے اوپر بھی آیا. انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا جی کہ یہ جو خاص طور پہ کوئنز ٹاؤن کا ایریا تھا وہاں پہ بیس بال سائز کے ہیلز جو تھے وہ پڑے, اور جو ونڈز تھیں وہ 100 km/h کے پاس تھیں. آج ٹورانٹو ریجنل ریئل اسٹیٹ بورڈ جو ہے اس نے اپنی خبر دی ہے کہ جو ہوم سیلز ہیں وہ جولائی کے مہینے میں اس سال جو تھیں اوپر تھیں, حالانکہ جو ہے وہ جو یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ساری رپورٹس آتی ہیں یہ جو لاسٹ منتھ ہوتا ہے نا, یعنی جیسے اب ہم اگست میں ہیں تو وہ جولائی کا ہوئے گا, جولائی میں بیٹھے ہوئیں گے تو وہ جون کا دے گا. اسی طرح جیسے سٹیٹس کینیڈا کی بھی آتی ہیں, تو اگر ابھی جو اگست میں آئے گی وہ جولائی کی ہوئے گی. تو یہ اسی طرح جو جولائی کے سیلز ہیں ان کی بات ہے کہ لاسٹ ایئر سے یہ تھیں اوپر تھیں, لیکن ویسے جو تھا جون کا مہینہ جو تھا اس سے یہ تھوڑا نیچے تھیں, لیکن لسٹنگز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ اوپر چلی گئی ہیں. تو 5391 ہومز جو ہیں وہ جولائی کے اندر سیل کیے تھے, وچ از 3.3% رائز کمپیئر ٹو 5220 ہومز سولڈ ان 2023. سیلز جو تھیں وہ ڈپ کی ہیں 1.7% سے جون کے مہینے میں. نیو لسٹنگز جو ہیں وہ تھیں 16296, وچ از اپ 18.5% فرام لاسٹ ایئر, اور یہ سارا جولائی کا ڈیٹا ہم آپ کو دے رہے ہیں. جو لسٹنگز تھیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آؤٹ پیس کیا سیلز کو, لیکن پرائسز جو تھیں وہ تھوڑی سی نیچے آئیں 0.9% سے, یعنی کہ 1.106 million کے پاس تھیں. کاسٹ آف بورنگ چونکہ اب نیچے آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ اور بھی آنے والے دنوں میں نیچے آئے گا, تو اس کی وجہ سے جو سیلز ہیں شاید وہ اب زیادہ ہوئیں گی, کیونکہ بائرز جو ہیں اب تھوڑا سا ان کا کانفیڈینس آ رہا ہے کہ ان کو لو مارٹگیج پیمنٹس جو ہیں وہ دینی پڑیں گی. ایوریج ڈیٹیچ پرائز جو ہوم کی تھی جولائی کے اندر وہ 1.425 million کے پاس تھی فار جی ٹی اے, اور کونڈو کی پرائسز جو تھیں وہ 718,698 ڈالرز جو ہیں وہ رہیں. تو زیادہ تیزی نہیں ہے ابھی بھی ریئل اسٹیٹ میں، لیکن شاید ہولے ہولے جیسے جیسے آئیں گی بینک آف کینیڈا کی پرائسز نیچے اوور نائٹ لینڈنگ ریٹس یعنی کہ، تو شاید پھر اس کے اندر ریئل اسٹیٹ میں تھوڑا اچھال آئے گا. یو ایس وائس پریزیڈنٹ کمیلا ہارس جو ہیں، بہت دنوں سے ہم ان کے بارے میں بتا رہے تھے آپ کو کہ ابھی تک انہوں نے جو ہے وائس پریزیڈنٹ اپنا چنا نہیں ہے اور بہت انسرٹنٹی تھی، اور آج انہوں نے فائنلی منیسوٹا کے جو گورنر ہیں ٹم والز، 60 ایئرز ان کی ایج ہے، پریٹی ینگ ہیں کمپیئر ٹو ادرز، ان کو انہوں نے اپنا وائس پریزیڈنٹ نامنی جو ہے وہ چوز کیا ہے جسٹ یسٹرڈے، کیونکہ کل تک ابھی ان کو خود بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ یہ نامینیشن کلنچ کر سکیں گی. بہرحال انہوں نے جب جیتی تو آج انہوں نے جو ہے اپنے وائس پریزیڈنٹ کا اناؤنس کیا ہے، اور یہ اس لیے ان کو کیا ہے کہ یہ مڈ ویسٹ میں ذرا ووٹس جیتنا چاہتی ہیں، اور یہ ملٹری ویٹرن بھی تھے تو ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار ہے اور یونینز کے ساتھ بڑا پیار ہے، تو اس لیے یہ ان کو ون کرنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو تھا انہوں نے والز صاحب نے بہت ہی ایمبیشس قسم کے جو ہیں وہ ایجنڈا، اپنا ڈیموکریٹک ایجنڈا جو تھا اپنی سٹیٹ میں جہاں پہ یہ تھے وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور ابارشن رائٹس کے لیے بھی، سویپنگ پروٹیکشنز کے لیے یہ کافی جو ہیں بات کرتے رہے ہیں. یہ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے والز صاحب کے بارے میں کہ ان کا پروون ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ جو وائٹ ورکنگ کلاس کے ووٹرز ہیں ان رسٹ بیلٹ سٹیٹس وہاں پہ یہ بڑے پاپولر ہیں، اور 12 سال سے کانگریس میں ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے سیکنڈ ٹرم اپنی ون کی تھی. انہوں نے اپنی ارلی لائف جو ہے ایز اے پبلک اسکول ٹیچر گزاری ہے، اس سے پہلے یہ ممبر تھے آف آرمی نیشنل گارڈ، اور جو ہے بہت سارا یہ لیبر یونینز کے لیے اور ویٹرنز کے رائٹس کے لیے کافی بات کرتے ہیں. نبراسکا کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے نیشنل گارڈ 17 ایئرز کی ایج میں کیا تھا، جوائن کیا تھا، اور جو ہے یہ ان کی اس ساری سروس میں ڈومیسٹک اور اوورسیز ڈپلائمنٹس ان کو دی گئی تھی، یعنی کہ ایز اے ملٹری مین صرف انہوں نے امریکہ میں نہیں بلکہ امریکہ سے باہر بھی سرو کیا ہے. اس سے پہلے جو ہے یہ ہائی اسکول میں سوشل اسٹڈیز کے ٹیچر تھے، اس کے علاوہ فٹ بال کے کوچ تھے منکاٹو میں، اور انہوں نے زیادہ تر جو اپنی یہ سیٹ جیتی تھی یہاں سے، یہ رورل اور ایگریکلچرل ڈسٹرکٹ جو تھی 2006 میں انہوں نے لی تھی. ان کے اوپر ایک ریسنٹلی ایلیگیشن فائنڈ آؤٹ کیا تھا لوگوں نے کہ 1995 میں یہ ریکلیس ڈرائیونگ کر رہے تھے نبراسکا کے اندر، پھر ان کو اریسٹ کیا گیا تھا بیکاز ہی واز انڈر دا انفلوئنس آف ان الکوہل، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا جی کہ میرا اتنا بیڈ ایکسپیرینس رہا کہ میں نے ڈرنکنگ بالکل چھوڑی تھی. امریکہ کے اندر ایک نیا سروے آیا ہے این پی آر پی بی ایس میرسٹ، اس کے مطابق 71% لوگ جو ہیں ان کا وہ کہتے ہیں جی امریکنز کا کہ ہمارا ان کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں ہے. اسی طرح 71% یہی جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی اس کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے یہ کون ہے. 17% نے اس کو فیوریبل ویو دیا اور 12% نے ان کو ان فیوریبل ویو دیا. تو ابھی تو خیر ریس جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، تو ابھی تو یہ اب فیس بنے ہیں وائس پریزیڈنٹ کا، تو اب شاید لگے گا کہ لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع کریں گے. بہرحال جو ہے یہ اتنے کوئی نون فیس نہیں ہے، تو لیٹس سی کہ ہاؤ مچ اسٹیم ڈز ہی گیٹ. ہالی ووڈ کے جو بہت بڑے آئیکون ہیں جان وائٹ، انہوں نے آج بہت کچھ سخت لفظ یوز کیے ہیں کمیلا ہیرس کے لیے. ایکس کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ کمیلا ہیرس کی جو پریزیڈنسی ہے یہ جو ہے بالکل نہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ شی از اے وار کرمنل اور شی از اے کریکلنگ ہائنا، اور یہ ایکو کرتی ہیں اوباما کی پالیسیز، جیسے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ بالکل فالو کر رہے ہیں اوباما کے پالیسیز، اور وہ کہتے ہیں جی کہ بس یہ بالکل یس سر قسم کی لیڈی ہے، یہ سنتی رہتی ہے اور رپیٹ کرتی رہتی ہے، اور جو آپ اس کو کہیں گے یہ وہی کرے گی. تو اگر اس کو آپ نے چوز کیا تو یہ ڈارکسٹ ٹائم جو ہے امریکہ میں شروع ہو جائے گا، اور ایک سول وار جو ہے وہ بھی شروع ہوئے گی. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ بائیڈن صاحب کو بھی بہت زیادہ کریٹیسائز کیا، انہوں نے کہا دا سک پریزیڈنٹ جو ہے جس نے پرمیشن دی ہے ٹو سٹیل چیٹ لائی اینڈ کل، تو جب آپ اس کے لیے ووٹنگ کریں گے ہیرس کے لیے تو وہ بھی یہی کچھ فالو کرے گی. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی دا ورسٹ کرائم ان ہیومن ہسٹری، اور ہمیں جو گاڈ ہے وہ پنش کرے گا ہماری اس چوائس کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب الیکشنز آنے والے ہیں تو ٹرمپ صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی آج بہت سارے سخت بیان دیے. انہوں نے کہا جی کہ گوگل جو ہے یہ بالکل انلیجیٹیمیٹ ہے، اور اپنے سپورٹرز کو کہا کہ دیر از سم تھنگ رانگ وتھ گوگل. اور کیونکہ ابھی ایک دن پہلے ایلون مسک صاحب نے کہا تھا کہ گوگل جو ہے وہ سٹاپ کر رہا ہے ٹرمپ کے اوپر انفارمیشن، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اگر آپ سرچ करें ट्रंप को तो वो उसको बैन करता है, लेकिन जब लोगों ने किया तो उनको पता चला कि वो खुद ब खुद जो है गूगल ऑटो करेक्ट कर रहा था और डोनाल्ड ट्रंप के बजाय डोनाल्ड डक आता जा रहा था, जिसके ऊपर फिर ट्रंप साहब ने आज बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया। इसके साथ साथ जो ट्रंप जूनियर है उन्होंने भी कहा जी के अपने एक्स पे कहा कि ये इंटेंशनली जो है ये पोल इंटरफेरेंस जो है गूगल कर रहा है, तो आप ज्यादा ना गए। तो मतलब दोनों तरफ ही जो लोग हैं वो काफी, अब चूंकि इलेक्शन का टाइम है तो गर्मा गर्मी में बयान जो है उनके लिए आ रहे हैं। हिजबुल्ला जो है उसने अब कुछ ड्रोन्स जो हैं फायर किए हैं इसराइल के ऊपर और काफी जो एरियाज हैं उनके ऊपर उनको स्ट्राइक किया है उन्होंने, और उसके बाद जो है काफी एयर रेड सायरन्स जो थे वो सुनाई देने लगे थे वहां पे बॉर्डर एरिया के अंदर। इजरायली मिलिट्री जो है उसने कहा कि ये हॉस्टाइल ड्रोन्स जो हैं ये हमने देखा है कि ये क्रॉस करके आ रहे थे लेबनान से, उसमें से एक को हमने इंटरसेप्ट किया है। इजरायली मेडिकल टीम ने कहा कि ये जो सात लोग जो थे वो जख्मी हुए थे और उनको इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल में भेजा गया था साउथ ऑफ नहारिया कोस्टल सिटी के अंदर, उनमें से एक जो है बहुत क्रिटिकल है। इजरायली मिलिट्री ने कहा कि ये इंजरीज जो हैं कॉज की गई है बाय इंटरसेप्टर और इसने अपना टारगेट जो था मिस किया था और ग्राउंड के ऊपर आके हिट किया था, जिसकी वजह से सिविलियंस जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ जो इनकी इजरायली एयरफोर्स थी उसने फिर स्ट्राइक किया हिजबुल्ला की फैसिलिटीज पे सदर्न लेबनान में। इजरायली वॉर प्लेन्स जो थे वो फिर बैरूत के ऊपर फिरते रहे और उसकी वजह से बहुत सारा उन्होंने वो सोनिक बूम्स जो थे वो सुने गए वहां पे, यानी कि काफी शोर देखा गया। लोग जो थे वो अपने घरों के छतों के ऊपर आ गए और बैल्कनीज में से ये देखते रहे और उनके जो घरों की जो खिड़कियां थी उन्होंने खोल दी ताकि अगर टूटे भी तो शीशा बाहर को गिरे। लेबनान का जो सदर्न सबर्ब्स हैं बैरूत के पास, इनके कैपिटल के पास जो कि हिजबुल्ला का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे असल में उनके मेंबर्स हिजबुल्ला के और सपोर्टर्स जो थे वो जमा हुए थे, क्योंकि एक टीवी के ऊपर इनके जो सीनियर लीडर हैं सैयद हसन नसरल्ला उनका आज स्पीच आने वाला था हानिया साहब के डेथ के बाद, उसमें जिस वक्त ये इजरायली प्लेन्स आए तो फिर वो सोनिक बूम्स जो हैं वो सुनेंगे। एट द सेम टाइम हमास ने अभी जो इस्माइल हानिया की डेथ हुई थी उसमें अपना जो नया चीफ है फॉर द टाइम बीइंग याहिया सिनवार उसको नेम किया है दैट ही इज गोइंग टू लीड हमास। अब याहिया सिनवार जो हैं उनकी क्या हिस्ट्री है ये हम आपको कल बताएंगे, सारी सुनाएंगे कि याहिया सिनवार जो हैं वो कौन हैं और क्या उनका जो है वो है सेक्रीफाइसेज है हमास के लिए, क्योंकि इस्माइल हानिया की तो बहुत सारी सेक्रीफाइसेज थी, आपको पता ही है कि ये जो वॉर कॉन्स्टेंटली चल रही थी इसराइल के साथ उनके अपने खुद के जो फैमिली के आठ बंदे हैं उनकी डेथ हुई थी। मतलब जाहिर है कि हमारे टिपिकल पाकिस्तानी मुल्ला की तरह नहीं है जो लोगों के बच्चों को कहते हैं जाओ जी जिहाद करो और अपने जो है बच्चे सारे अमरीका में बैठे होते हैं, तो ये जो मौलवी हैं ये उस तरह के हैं जो कि जिहाद पे बिलीव करते हैं जिनकी अपनी फैमिली भी इसके अंदर फिर पार्टिसिपेट करती है, ऐसे है। आज तुर्की है जो है उसने कहा है कि हम फॉर्मली सबमिट करेंगे डिक्लेरेशन टू इंटरवेंशन इन साउथ अफ्रीकाज जीनोसाइड केस अगेंस्ट इसराइल इन गाजा वॉर एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एट द हेग। तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदन उन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कायरो के अंदर कहा कि हमने ये डिसीजन मई के अंदर लिया था कि हम जो है स्टेप्स मेजर्स जो है स्टेप अप करेंगे अगेंस्ट इसराइल, क्योंकि उसका जो असॉल्ट है गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए हमको लीगल प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने ऑर्डर किया था इसराइल को कि कोई भी ऐसा एक्ट ना करे जो कि यूनाइटेड नेशंस जीनोसाइड कन्वेंशन के अगेंस्ट है, और अपने ट्रुप्स को भी मना करे कि कोई जीनोसाइडल एक्ट उसने पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट नहीं करना है। ये रेजोल्यूशन जो थी ये लेकर आए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी ये केस लेकर आया था साउथ अफ्रीका और इसराइल के अगेंस्ट दिसंबर के अंदर, और क्योंकि उसने एक्यूज किया था कि इसराइल जो है पैलेस्टीनियंस का गाजा में जीनोसाइड कर रहा है। ये केस जो है जिस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आया तो साउथ अफ्रीका ने कहा जी कि इसराइल वायलेट कर रहा है 1948 का जीनोसाइड कन्वेंशन जो कि एस्टैब्लिश किया गया था बड़ा ही आयरोनिकली इन द आफ्टर मैथ ऑफ होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट आपको पता ही है जिसमें कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ज्यूज को हिटलर ने मारा था, तो वो कहते हैं जी कि इनकी अपनी खुद की हिस्ट्री अगर जीनोसाइड की है तो ये दूसरों का जीनोसाइड कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इन्होंने पूरा का पूरा रिवोक किया हुआ है ये कन्वेंशन और ये खुद पैलेस्टीनियंस का ये कर रहे हैं, और इनको जो है रोकना चाहिए कि ये फिर से ये ना करें, और ये यूनाइटेड नेशंस की जो प्रोविजन है ये भी बोलती है। इसराइल और उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि साउथ अफ्रीका झूठ बोल रहा है और ये बेसलेस एलिगेशन हैं हमारे अगेंस्ट। भाई जान 138,000 बंदा मार देता है तो ये एलिगेशन हैं, तो मतलब है कमाल ही है, और वेस्ट जो है आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। वैसे बड़े जी ह्यूमन राइट्स के मतवाले बनते हैं, और जी ह्यूमन राइट्स, और पाकिस्तान में इनको बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस फटाफट नजर आ जाती हैं, सऊदी में नजर आ जाती हैं, कतर में नजर आती हैं। तो ये कुछ जो इसराइल कर रहा है, ये इनको पूरे यूरोप को नजर नहीं आ रही है। तो मतलब है क्या बात है कि कैसे जबरदस्त आपने कलर्ड ग्लासेस पहने हुए हैं कि आपको सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो बड़े नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान में, सऊदी में, कतर में, यूएई में ये आपको नजर आ रहे हैं। इवन बांग्लादेश को भी आप पिछले दिनों में कह रहे थे कि बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, लेकिन ये इसराइल जो कुछ कर रहा है ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है। ये क्या है फिर, ये आप ही एक्सप्लेन कर दें। आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं हमसे, हम तो बेचारे जाहिल किस्म के लोग हैं, जाहिल मुल्क के जाहिल बाशिंदे हैं। आप बता दो फिर ये क्या है, ये जो 138,000 बंदा मार दिया एलएजलीज ने इसराइल ने, ये क्या है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं है, ये जीनोसाइड नहीं है, ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसके अगेंस्ट नहीं है, तो क्या है फिर ये, तो आप खुद ही से बता दो। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी केयर स्टार्मर, उन्होंने आज कोबरा मीटिंग बुलाई है। अच्छा जी, कोबरा का हम आपको बताएंगे मतलब क्या है। कोबरा मीटिंग में बुलाई है क्योंकि आपको पता ही है कि बेतहाशा राइट्स जो हैं इंग्लैंड के अंदर चल रहे हैं। आज इन्होंने जो बुलाए थे लोग उसके अंदर रेलिवेंट मिनिस्टर्स, पुलिस चीफ्स और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे वो भी इसमें आए हुए थे, क्योंकि कल वेंसडे को बहुत ज्यादा रैलीज जो हैं वो इंग्लैंड में निकलने वाली हैं। अकॉर्डिंग टू पुलिस 30 प्लान्ड रैलीज जो हैं वो निकाली जाएंगी इंग्लैंड के अंदर, और इसके अंदर हो सकता है, पुलिस का कहना है जो उनकी इंटेलिजेंस कह रही है कि लॉयर्स के ऑफिसर्स जो हैं उनको टारगेट किया जाएगा। 30% ऑफ द ट्रेन्ड राइट कॉप्स जो हैं, यानी कि 6,000 ऑफिसर्स पुलिस के अलॉन्ग विद द रेगुलर पुलिस, इनको मोबिलाइज किया गया है इंग्लैंड के अंदर। पुलिस जो है वो कहती है जी कि नाउ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड, क्योंकि पहले तो हमें जो लास्ट वीक में वायलेंस हुई थी उसके लिए तो हमें ना समझ आई ना हम प्रिपेयर थे, लेकिन अब हम प्रिपेयर्ड हैं। ये सारे राइट्स उस वक्त शुरू हुए थे, हम आपको बड़े दिनों से बता रहे हैं कि जिस वक्त 3 बच्चे जो थे वो मैस स्टैबिंग में मार दिए गए थे साउथ पोर्ट में, और फिर जो है बड़ी फॉल्स किस्म की न्यूज ऑनलाइन फैलाई गई थी कि ये जो सस्पेक्ट है ये एक असाइलम सीकर है, और फिर बहुत सारा एंटी मुस्लिम जो है वो मॉब बाहर निकल आया था और ये काफी क्लैशेस हुए थे। प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर जो हैं उन्होंने एक कोबरा मीटिंग जो थी वो कल भी की थी और दूसरी कोबरा मीटिंग आज की। अच्छा, ये जो कोबरा है इट स्टैंड्स फॉर कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम ए। रूम ए के अंदर बेसिकली यहां पे इमरजेंसी मीटिंग्स होती हैं, जब भी कभी सिविल अनरेस्ट या कि फ्लडिंग या कोई तूफान आ जाते हैं तो रूम ए के अंदर मीटिंग्स होती हैं। तो ये कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम ए कोबरा इसको बोला जा रहा है, कोबरा मीटिंग्स जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो हमारी पुलिस है वो एक स्टैंडिंग आर्मी की तरह जो है वो एक्ट करेगी, और ये जो कोई भी परपेट्रेटर्स हैं इनको ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इनका नेम लो बल्कि इनको शेम भी करो पब्लिकली, ताकि लोगों को पता चले कि ये मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी किसने फैलाई है। इसके अलावा जो पुलिस है अपने जो प्रिजन्स हैं उसके अंदर 500 स्पेसेस अवेलेबल कर रही है कि अगर ये लोग जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको अगर पकड़ा जाएगा, जो मिसक्रिएंट्स हैं जाहिर है, तो उनके लिए जेलों के अंदर जगह होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो एलॉन मस्क साहब हैं उन्होंने आज इसका बहुत ज्यादा कायर स्टॉर्मर का जो है वो मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ही इज द पीएम टू टीयर टीयर, ऐसे करके उसने कहा है, और उसने कहा जी कि ये जो बिला वजह ये थियोरीज बना रहा है कि फार राइट प्रोटेस्टर्स हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डाउनिंग स्ट्रीट जो है उसने कहा है सबको कि भई आप ये जो बिलियनेयर है एलॉन मस्क इसके साथ ज्यादा इसके कमेंट्स पे ना तो परवाह देने की जरूरत है ना तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज एक लेटर लिखा गया है एमपीज को चीफ विप जो है एलन कैम्बल की तरफ से, और उन्होंने कहा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे ये लोग फैला रहे हैं उसकी तरफ आप ध्यान ना दें और ऑनलाइन डिबेट्स जो है उसके अंदर इंडल्ज ना करें। तो ये जनाब आज सारी जो है बातचीत इन्होंने की है। एएफपी की रिपोर्ट है जी जो आई सबसे पहले और फिर उसके बाद दूसरों की भी आई, उसके मुताबिक बांग्लादेश में जो नोबेल प्राइज पीस प्राइज विनर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, 84 इयर्स उनकी एज है, उनको आज इंटरिम गवर्नमेंट का हेड चूज किया गया है बांग्लादेश में। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये, और इन्होंने पहले तो इनको जब कहा गया तो उन्होंने कहा जी मेरा ये काम नहीं है, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मेरा काम कुछ और है, लेकिन फिर स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि ये सिर्फ एक इंटरिम सेटअप है, उसके अंदर एक सिविलियन जो है उसको सिविलियन गवर्नमेंट के रेंज लेने चाहिए। उसी के ऊपर बात करते हुए मोहम्मद यूनुस साहब ने कहा कि मैं चाहता तो नहीं था लेकिन अब मैं इनको रिफ्यूज भी नहीं कर सकता जो कुछ मुल्क में हालात है। इस वक्त यूनुस साहब जो है वो पेरिस में है, और वहां से ये मीडिया के साथ बात कर रहे थे। इससे पहले बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया था और ये पार्लियामेंट जो है अभी जनवरी 7 को ही इलेक्ट हुई थी, जिसमें कि शेख हसीना जो थी फिर से पांचवीं बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसने कहा जी कि ये डिसीजन प्रेसिडेंट साहब ने जो मिलिट्री के तीन चीफ्स हैं उनके साथ बात करने के बाद ये फैसला लिया है। उसके साथ साथ बहुत सारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सोशल सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लीडर्स ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जो थी उनके लोग थे, उन सबकी सहमति से फिर यूनुस साहब का नाम दिया गया है। यूनुस साहब जो है उनका बड़ा काम यह है था बांग्लादेश में कि उन्होंने ग्रामीण बैंक शुरू किया था, एक माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक जो कि ये गरीब लोगों को उसमें पैसे और क्रेडिट्स देते थे ताकि वो अपने छोटे मोटे बिजनेसेस शुरू कर सके और उसमें मिलियंस ऑफ लोगों को फिर ये जो है बिलो पॉवर्टी लाइन खींच के ऊपर लाए हैं। तो यानी कि पॉवर्टी को, गुर्बत को खत्म करने का ये इन्होंने बड़ा इनोवेटिव तरीका दिया था। लेकिन इनके ऊपर फिर जो है लेबर लॉ के अंडर वायलेशंस के लिए इनके ऊपर केस बनाया गया था शेख हसीना की गवर्नमेंट में। सपोर्टर्स जो थे वो कहते थे कि जाहिर है हसीना साहिबा जो हैं वो इनको टारगेट कर रही हैं, जो कि अब इस वक्त जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर हैं। इन्होंने तो सोचा था कि ये यूके या यूएस में जाएंगी, लेकिन यूके के जो लॉज हैं फॉर एग्जाम्पल वो अलाउ नहीं करते हैं इनको असाइलम सीक करने के लिए जब तक ये फिजिकली खुद वहां पर प्रेजिडेंट नहीं होंगी। इसके अलावा यूके जो है कॉन्स्टेंटली इनको बोल रहा था कि बांग्लादेश के अंदर बेतहाशा वायलेंस चल रही है और जो लोग वायलेंस अंदर इन्वॉल्व होते हैं ना तो हम इनको टेम्पररी रिफ्यूज देते हैं ना उनकी असाइलम जो है वो हम प्रोसेस करते हैं। ये इसलिए इंग्लैंड जाना चाहती थी कि इनकी जो बहन है वो ब्रिटिश नेशनल है। इसके साथ साथ इन्होंने जो दूसरा इरादा किया था कि यूएस में जाएंगी, लेकिन यूएस वालों ने भी कहा इनको कि तुम्हारे मुल्क में जो टॉर्चर और किलिंग ऑफ प्रोटेस्ट और वो चल रहा है उसके होते हुए उन्होंने इनका वीजा कैंसिल किया था। जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं उन्होंने कहा जी कि अब हो सकता है कि अगर इनको हिंदुस्तान ना रखे तो फिर ये दुबई चली जाएंगी, दैट वुड बी द पॉसिबल डेस्टिनेशन, लेकिन अभी तक तो हिंदुस्तान ने इनको जाने को नहीं कहा है और यही अभी लग रहा है कि इनका जो स्टे है वहां पे उस पर कोई लिमिट्स नहीं लगाई गई, तो यानी कि जब तक ये चाहेंगी वहां पे रह सकती हैं। तो ये अभी हम आपको बता दें कि जैसे हम आपको कल बता रहे थे कि शायद ये वेस्ट बंगाल में या त्रिपुरा में गई हैं, नहीं, ये इनका जो जहाज लैंड किया था जो मिलिट्री का था वो न्यू दिल्ली के अंदर यानी कि उनकी जो राजधानी है उधर लैंड किया था। तो ये इस वक्त जो है दिल्ली में और इसीलिए आज जो है लोकसभा में बहुत सारा शोर मचा और एस जयशंकर साहब को बेचारे को ना सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा के अंदर भी जवाब देने पड़े। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ये जो होने वाला है मेगा मेला एंड हलाल फूड फेस्टिवल एंड प्रॉपर्टी एक्सपो जो कि नासिर शाह साहब लेकर आ रहे हैं 10 अगस्त को 10 जो हैं वो आर्टिस्ट उनके साथ। ये ब्रैम्पटन फेयर ग्राउंड्स में हो रहा है विच इज लोकेटेड एट 1242 हॉट लेक रोड कैलेडन के अंदर। ये मेला शुरू होगा 10 तारीख को 12 PM से लेकर 11 बजे रात तक चलेगा। अगर आपको स्टॉल्स बुकिंग कराने हैं या स्पॉन्सरशिप्स देने हैं तो आप नासिर शाह को कॉल कर सकते हैं एट 416-940-0339 और एक है वकास सैयद, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं एट 647-712-7000। और जनाब राजा भाषा जी जो हैं वो कहते हैं जी कि मैं बहुत सारे आपको अच्छे कवरेज देता हूं ऑटो के और होम के यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है राजा भाषा को कॉल करें ताकि आपके बहुत सारे पैसे बचें। इनका नंबर है 6472903773 एंड पायल ज्वेलर्स। किसी किस्म की भी आपको जबरदस्त किस्म की ज्वेलरी चाहिए है दुबई सिंगापुर इंडिया पाकिस्तान स्टाइल की तो आप इनको या तो विजिट करें या कॉल करें। दे आर लोकेटेड एट 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव यूनिट 42 ब्रैम्पटन और इनका नंबर है 9057907879। ठीक है जी। अच्छा पाकिस्तान के अंदर जनाब आज एक बिल लाया गया है ताकि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी टू गिव रिजर्व सीट्स टू पीटीआई उसको कट किया जा सके यानी कि उसको कैंसिल किया जा सके। इससे पहले सुबह के वक्त नेशनल असेंबली के अंदर जो है ये बिल लाया था जो पास होके फिर सेनेट के अंदर आया। पीएमएलएन के सेनेटर जो है तलाल चौधरी उन्होंने ये प्रेजेंट किया था इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 और सेनेट में हालांकि बहुत सारी ऑपोजिशन इनकी हुई पीटीआई की तरफ से और नेशनल असेंबली में भी, लेकिन फिर भी इसको जो है फौरन पास किया गया नेशनल असेंबली में भी और फिर सेनेट में भेजा गया। नेशनल असेंबली में भी लोगों ने कहा जो ऑपोजिशन में थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। पीएमएलएन के जो लॉ मेकर हैं बिलाल अजहर कियानी लास्ट मंथ انہوں نے نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی جو ہے اس میں یہ بل ٹیبل کیا تھا جس کو کہ پھر سپورٹ ملی تھی 8 ممبرز کی نیشنل اسمبلی پارلیمنٹری افیئرز کمیٹی کے اور 4 لوگوں نے اپوز کیا تھا. شاہد اختر صاحب جو ہیں جے یو آئی ایف کے ایم این اے جو ہیں انہوں نے ابسٹین کیا تھا. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بیرسٹر احمد پنجوٹا جو ہیں انہوں نے میڈیا کو کہا کہ پارلیمنٹ اور نیشنل اسمبلی جو ہے ان کے پاس لیگل کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لاس کے اندر امینڈمنٹس کر سکیں, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس لائٹ میں اس کو چینج کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے اوپر رولنگ جو ہے سپریم کورٹ نے دی تھی, یعنی اس کا ججمنٹ اس کے اوپر آیا تھا. اگر تو جو پرپز ہے لا کا کہ اس کو امینڈ کیا جائے تو کسی بھی عام ریزن کے لیے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے اندر پریجڈس شامل ہو جائے تو پھر اس کو فوراً اسٹرائک ڈاؤن کر دینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا پریجڈس ہے پی ٹی آئی کے خلاف, یہ وہ کہنا چاہتے تھے. یعنی آسان لفظوں میں انہوں نے کہا جی کہ انڈر کانسٹیٹیوشن جو ریزرو سیٹس ہیں وہ کیسے اور کس کو دینی چاہیے, اس کا سٹینڈ جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کے اندر اس کی یعنی کہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے اندر پرابلمز آ سکتے ہیں. اسی طرح بیرسٹر ردا حسین جو ہیں انہوں نے بھی کہا جی کہ یہ جس طرح کے امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں ان کو کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا, ان کو ان کانسٹیٹیوشنل کہا جائے گا اور ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا. تو یعنی کافی ملے جلے قسم کے جو ہیں ریاکشن ہیں یہ جو امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں اور جو انہوں نے فٹوفٹ پاس کیا ہے. منسٹر فار لا اینڈ جسٹس جو ہیں اعظم نذیر تارر صاحب انہوں نے آج نیشنل اسمبلی کو بتایا کہ جی یہ جو پاسپورٹس میں بہت زیادہ ڈیلے آ رہا تھا اور پاسپورٹس جو ہیں پاکستانی وہ بالکل بن نہیں رہے تھے اور لوگوں کو بڑے لمبے لمبے بیک لاگز تھے اور کھڑے ہونا ویٹ کرنا پڑ رہا تھا, تو اس کے اندر آج انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نیو مشینری اور نیو سافٹ ویئر جو تھا وہ انسٹال کرنا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کافی بیک لاگ آ گیا تھا, لیکن اب چونکہ نیا سسٹم لگا دیا ہے تو اب یہ کام کرے گا. انہوں نے ڈیٹیلز دیتے ہوئے کہا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس نے کہا تھا کہ نیا سسٹم امپورٹ کیا جائے اور پروسیسز جو ہیں ان کو امپروو کیا جائے. یہی چیز جو تھی انٹرم گورنمنٹ بھی آگے لے کے چل رہی تھی اور مشینری آنے میں اور سسٹم کو سیٹ کرنے میں جو ہے بڑا ٹائم لگ رہا تھا, بٹ ناؤ دیٹ دا سسٹم ہیز بین سیٹ تو اب پاسپورٹس ایشو کیے جائیں گے بہت تیزی سے. پہلے جو تھے وہ کیے جاتے تھے 26,000 کے قریب جو ہیں وہ ایک مہینے کے اندر یا کچھ مہینوں میں, ایک مہینے میں کی بات تھی شاید, تو اب جو ہے 60,000 کے قریب پاسپورٹس جو ہیں وہ جاری کیے جا سکیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے چونکہ اب پاکستانی مشنز جو ہیں ان کے اندر بھی یہ ڈپارٹمنٹس بڑھا دی ہیں فرام 20 to 92, تو اس لیے کیونکہ پاسپورٹ آفیسز بھی انکریز ہو گئے ہیں, ایڈوانس مشینری بھی آ گئی ہے, ایڈوانس پرنٹرز بھی آ گئے ہیں, تو اس لیے اب جو سٹیزنز ہیں ان کو ڈیلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ جو لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم ارجنٹ فیس بھی دے رہے ہیں تب بھی ہم کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے پاسپورٹ کے لیے, تو اس لیے جناب یہ پھر اب جو ہے مسئلہ انہوں نے کہا جی کہ اب یہ ختم ہو جائے گا. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ چل رہا ہے یہ اس لیے چل رہا ہے کہ اس کو لوگوں کو سپریس کیا گیا تھا اور یہ جو آن گوئنگ کریک ڈاؤن میری پارٹی اور میرے ورکرز کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. یہ پہلے تو بات کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں اپنے لائرز کے ساتھ اور ان کی بات جو ہے پھر بعد میں میڈیا کو پہنچائی گئی. انہوں نے 6 اپنے جو لائرز ہیں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل کا جو کانفرنس روم ہے اس میں 1 گھنٹے کے لیے بات کی. ان میں جو لوگ شامل تھے وہ تھے انتظار پنجوٹا, زبیر کسانا, معظم بٹ, سہیل سلطان, ضمیر کھوسا, ہارون ارشاد جنجوا. ان سے میٹنگ کے بعد جو پنجوٹا صاحب ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سوابی کی ریلی ہے اس کو جو آپ نے اتنا سپورٹ کیا اس کے لیے بہت زیادہ شکریہ, اور انہوں نے کہا جی کہ 13 اگست کی رات کو آپ نے اپنا نیشنل فلیگ جو ہے اس کو ڈسپلے کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ February 8 کے الیکشن میں جو اپریشن آپ نے ہمیں دکھائی تھی اس کے کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ایک نیریٹو بل کیا جا رہا ہے May 9 کے ساتھ ساتھ اور اس میں جو ہے وہ پبلک جو ہے اس نے اپنا غصہ دکھا دیا تھا یہ جو آپ نے رگڈ الیکشنز کیے تھے اس میں, اور یہ جھوٹا سارا نیریٹو تھا خان صاحب کے لیے. خان صاحب نے اس کے علاوہ بنجوٹا صاحب کے مطابق یہ بھی کہا ہے کہ بھئی آپ جس وقت تک پراپر ڈیسیجنز نہیں لیں گے تو آپ کا ملک میں جو انفلیشن ہے جو کہ آپ کی اکانومی کو ویک کرتا جا رہا ہے یہ ایسے ہی چلے گی اور لوگوں کے پرابلمز ایسے ہی رہیں گے. بنجوٹا صاحب نے کہا جی اس کے علاوہ جی کہ عمران خان صاحب کی 0 tolerance ہے ٹوورڈز کرپشن. انہوں نے اب کے پی کو کہا ہے کہ ایک کمیٹی فارم کرو تاکہ کرپشن کے مسئلے کے اوپر جو ہے اس کو حل کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب نے جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں گنڈا پور صاحب ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا جی ही हैज डन अ कमेंडेबल जॉब, और जो कुछ उसने सवाबी के अंदर रैली करवाई है दैट इज एप्रिशिएबल एंड नोटवर्दी। तो ये सारे पैगाम जो हैं बैरिस्टर पंजोटा जो हैं इन्होंने फिर आके, लॉयर पंजोटा जो हैं इन्होंने आके सारे लोगों को बताया। पीटीआई के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हैं राउफ हसन साहब जी, उनको अब बेल मिल गया है और ये अप्रूव किया था इनका बेल प्ली जो है वो एटीसी यानी कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट इन इस्लामाबाद इन टेरर फाइनेंसिंग केस, इसलिए इनको रिलीज किया गया है आज अडियाला जेल से। इन्होंने अपनी पिटीशन जो थी वो जो डाली थी तो वो उसको आज एटीसी के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कबूल किया अगेंस्ट श्योरिटी बॉन्ड ऑफ 200,000। इनको 14 डेज के जुडिशियल रिमांड पे एटीसी में अडियाला जेल में सैटरडे को भेजा गया था क्योंकि इनके साथ जो को एक्यूज था पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया का कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ, उसने कहा था जी कि इन्होंने मुझे अलेजली कहा था कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग करनी है। यार ये बंदा रऊफ हसन अपने पास बेचारे के पास पैसे नहीं है, इसने क्या टेररिस्ट फाइनेंसिंग करनी है, मतलब हैव अ हार्ट यार, मतलब किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले उस बंदे को देख तो लिया करो, मतलब ये किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो भाई, तो मासूम चिड़ी जितना बंदा है। तो जी इसने मुझे कहा था कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो करनी है, वाह जी वाह क्या बात, अपनी जान बचाने के लिए आप इतने गिर जाते हैं, क्या बात है। अच्छा जी, तो हसन साहब जो थे रऊफ हसन साहब, उनका इनिशियली तो नाम टेररिज्म के चार्ज में एफआईए में नहीं था लिखा था, लेकिन जंजुआ साहब की स्टेटमेंट के बाद जो है फिर उनको किया गया, क्योंकि जंजुआ साहब ने कहा जी कि रऊफ हसन ने मुझे 3 लाख रुपए दिए थे टेरर स्प्रेड करने के लिए ऑन July 31st। इनके जो लॉयर्स हैं रऊफ हसन साहब के अली बुखारी, उन्होंने कहा कि जी इस बंदे को यानी बेचारा धान पान से आपने देखा ही हुआ है, इसका फिजिकल रिमांड जो है वो बिल्कुल जो है वो अननेसेसरी है, आपने कोई पैसे वैसे इनसे लेने हैं पैसे ले लो और इसकी जान छोड़ो, उसका कुछ लेना देना है नहीं इन चीजों के साथ। तो बहरहाल जी अच्छी बात है बेचारे मस्कीन को आज छोड़ दिया गया है। ये फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर असद उमर साहब जो हैं जी, उनकी तबीयत आज बेइंतहा खराब हो गई थी, इनको एटीसी एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उसमें लाहौर में लाया गया था और इनके लॉयर ने कहा जी कि इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उनके चेस्ट में जो थी पेन निकल आई थी जब ये कोर्ट रूम में आए थे। हॉस्पिटल वालों ने डॉक्टर्स ने कहा है कि इनकी कंडीशन अब बेटर है और इनको मेडिसिन दी जा रही है। उन्होंने कहा जी कि इनकी हालत इसलिए खराब हुई कि इन्होंने जो बीपी की पिल थी वो खाली पेट ले ली थी और उसके बाद जब डॉक्टर्स ने इनके ब्लड के सैंपल्स लिए तो पता चला जी कि इनकी ईसीजी तो बिल्कुल ठीक है लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बेतहाशा ड्रॉप कर गया हुआ था। तो अभी इनको हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। इससे पहले भी 9 जून को कराची में इनको बैक पेन आ गया था बहुत सीवियर और इनको हॉस्पिटल लेकर गए थे ट्रीटमेंट के लिए। इनको जो है May 9 के राइट्स जो हैं उस सिलसिले में इनको कोर्ट में बुलाया गया था और उस सिलसिले में इनसे बातचीत की जा रही थी। ऑन November 11, 2023 इन्होंने रिजाइन कर दिया था पीटीआई की बेसिक मेंबरशिप से और उसके बाद इन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल हिस्सा नहीं लूंगा। इसके बाद इन्होंने क्विट किया था पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट से भी ऑन May 24th। तो बेचारे जो हैं वो काफी फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं साहब डार साहब, वो रियाद पहुंचे हुए हैं जी ओआईसी की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मीट है वो अब शुरू हो गया है और आपको पता ही, हमने कल आपको बताया था कि ये इसको बुलाया गया है गाजा के सिचुएशन पे बात करने के लिए। जब ये मदीना एयरपोर्ट में पहुंचे तो इनको पाकिस्तान के एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया अहमद फारूक और सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री के डीजी जो हैं इन मदीना इब्राहिम बिन मोहम्मद सईद अल सोभी, उन्होंने इनको वहां पे रिसीव किया। फॉरेन ऑफिस के मुताबिक डार साहब जो हैं वो बताएंगे वहां पे ओआईसी को कि पाकिस्तान जो है वो पैलेस्टीनियंस के कॉज के लिए हमेशा फोर फ्रंट पे रहा है, उसने हमेशा इंटरनेशनली इनके लिए आवाज उठाई है और डार साहब जो है वो पाकिस्तान का बहुत डीप कंसर्न जो सिचुएशन है गाजा में उसके ऊपर बात करेंगे और जो वाइडर मिडल ईस्ट रीजन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ पीस के लिए और वो जो रिलीफ एड है गाजन्स के लिए उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं यानी कि दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स उनके साथ भी बातचीत ये करेंगे। तो बस भाईजन बातचीत ही करते रहना होना वाणा कुछ भी नहीं है, बहरहाल चलो कोई नहीं, खुश तुसी हो जाओ घूम फिर लो तुसी, इस को पहले तो कदे तुसी सऊदी आए नहीं होना इस वास्ते। सिंध के जो सीनियर मिनिस्टर हैं जी शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने आज एक्स के ऊपर कहा है कि जितने भी ओल्ड बस टर्मिनल्स हैं कराची के अंदर उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जा रहा है आउट ऑफ द सिटी क्योंकि सिटी के अंदर कराची सिटी में ट्रैफिक जो है वो बेतहाशा रोड्स के ऊपर बढ़ गई है और ये जो بسیں ہیں اور ان کے ٹرمینلز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے گاڑی چلانا بے انتہا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹرانسپورٹرز کو ہارم نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی پیسنجرز کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے پیسنجرز کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم یہ جو بنائیں گے ٹرمینلز شہر کے باہر, اس کے لیے ایک شٹل فری شٹل سروس جو ہے وہ چلائی جائے گی فرام اگست 14. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ پولیس چیک پوسٹ بھی بنائی جائیں گی فار سیکیورٹی. شٹل سروس جو ہے یہ سٹارٹ ہوئے گی کینٹ اسٹیشن سے, ساگر شہید روڈ, صغیر شہید روڈ سے, ایم اے جنا روڈ سے اور الکرم اسکوائر سے, اور پھر یہ جو شہر کے باہر ٹرمینلز بنائے جائیں گے ادھر وہ لے کے جائیں گے اور وہاں سے لوگ پھر اپنے ڈیسٹینیشنز پہ جا سکیں گے. تو ہوپ فلی وہ کہتے ہیں جی کہ جو کراچی کی سڑکیں اس پہ رش شاید کم نظر آئے گا. اچھا جناب, وہی جڑی کہانی میں تمہیں سنائی سی پہلے کہ آج جو انڈیا کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز ہیں جے شنکر صاحب, ان کو کافی کھینچا جا رہا تھا کہ بھئی یہ شیخ حسینہ صاحبہ جو ہیں یہ بنا نوٹس دیے ہوئے کیسے آ گئی. تو آج جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سو موٹو ایڈریس جو ہے انہوں نے کیا راجیہ سبھا میں بھی اور لوک سبھا میں بھی, انہوں نے کہا جی کہ ہم کو انہوں نے بہت ہی شارٹ نوٹس, یعنی ہم کو انڈیا کو بہت ہی شارٹ نوٹس انہوں نے دیا تھا, اور جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ کانسٹنٹلی ان ٹچ ہے ود اتارٹیز ان بنگلہ دیش, اور وہ وہاں پہ سچویشن مانیٹر کر رہی ہے, نہ صرف ان کے ملک کی بلکہ جو مائنورٹیز کی جو حالت ہے اس کے اوپر بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ حسینہ صاحبہ جو اپنے ملک سے بھاگی تھیں وہ آ کے انہوں نے دلی کے اندر لینڈ کیا ہے, اور پروٹیسٹرز جو تھے وہ ڈھاکہ کے اندر آگے تھے, حالانکہ کرفیو لگا ہوا تھا ڈھاکہ میں, پھر بھی اس کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے تھے, اور ہماری انڈرسٹینڈنگ انڈیا کی یہ ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا حسینہ صاحبہ نے ریزائن کرنے کا, اور انہوں نے پھر مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ آنے دیا جائے. کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی جیسے ہی انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھیجی فلائٹ کلیئرنس کی ہم کو بھی ریکویسٹ آئی کہ بنگلہ دیش کے اتھارٹیز جو ہیں ہم کو کہہ رہی ہیں کہ ایک ملٹری کے ہیلی کاپٹر میں یہ آ رہی ہیں, تو پلیز اس کو جو ہے آپ سیف پیسج دیں کیونکہ شاید پرائم منسٹر کی لائف جو ہے وہ خطرے میں ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ سچویشن جو ہے کانسٹنٹلی ایوالو کر رہی ہے, اور انڈین گورنمنٹ بہت کلوزلی ان کی جو بنگلہ دیشی اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور انڈین کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں تھرو آور ڈپلومیٹک مشن ان ڈھاکہ. انہوں نے کہا جی اس وقت 19,000 انڈین نیشنلز جو ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش میں ہیں, اس میں سے 9,000 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں, موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو واپس آ چکے ہیں, وہ اور جولائی میں ہی آئے تھے جب ان کو انڈین ہائی کمیشن نے ایڈوائز کیا تھا کہ فوراً آپ جو ہے بنگلہ دیش چھوڑ کے جائیں. اس کے علاوہ وہاں پہ جو بہت سارے جو چرچز اور ٹیمپلز کے اوپر جو اٹیک آ رہے تھے, تو کچھ بہت سارے مسلمان لیڈرز اور آرگنائزیشنز نے جو ان کو پھر چرچز کو ٹیمپلز کی جو گارڈ کر رہے ہیں اور اس کو حفاظت دے رہے ہیں, اس کی ایس جے شنکر صاحب نے بہت تعریف کی. انہوں نے کہا اس کے علاوہ جو ہیں دوسری آرگنائزیشنز بھی چرچز اور ٹیمپلز کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن ہم کانسٹنٹلی لا اینڈ آرڈر سچویشن وہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ ریسٹور ہو تو اپنے جو انڈین نیشنلز ہیں ان کو وہاں سے ایک سیف پیسج دیا جائے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو بارڈر کے اوپر جو بنگلہ دیش کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو ہم نے ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے تاکہ کسی قسم کا انفلٹریشن یا کوئی بھی مس کریئنس جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر داخل نہ ہوئے, اور لگ یہی رہا ہے کہ جیسے حسینہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کا سٹے ایکسٹینڈ ہوئے گا, جیسے کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یو ایس اور یو کے جو ہیں ان کو لینے کو تیار نہیں ہے بیکاز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز ان بنگلہ دیش. اور جناب کانگریس اور بی جے پی کے بیچ میں لڑائی جاری ہے, روز کوئی نہ کوئی مدعا ہوتا ہے. کانگریس کہتی ہے گورنمنٹ جو ہے اس نے جو بل دیا ہے فائنانس بل یا دوسرا بجٹ جو دیا اس میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. بی جے پی کے جو ایم پیز ہیں وہ ان کی گاندھی فیملی کے اوپر اٹیک شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوا ایگزیکٹلی, کانگریس نے بڑا سلام کیا ہے جی نشیکانت دوبے جو ہیں, کیونکہ انہوں نے بے تحاشا پھر سے اٹیک کیا گاندھی فیملی کو, اور انہوں نے کہا او تم لوگ کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, راہل گاندھی کی تو اپنی خود کی بہن جو ہے پرینکا گاندھی واڈرا وہ یہ آنند امبانی کی شادی پہ گئی ہوئی تھی. بی جے پی کے ایم پی کے جو یہ کلیمز تھے کانگریس نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. فائنانس بل کے اوپر اصل میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی لوک سبھا میں جس میں کہ ڈوبے صاحب نے یہ لے کر آ گئی ہے, اور انہوں نے کہا جی یہ تو بڑے یہ امبانی اور ادانی کے بھائی جو ہے بڑا خلاف بولتا ہے, اور اس کی اپنی خود کی بہن مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی پہ پہنچی ہوئی تھی. کانگریس کے جو لیڈر تھی پھر سپریا شری ناتھ, انہوں نے کہا جی کہ ڈوبے صاحب جو ہیں وہ ایڈکٹڈ ٹو لائنگ ہے, اور جس وقت تک وہ اپولوجائز اپنے کانوں کو پکڑ کے نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم ان کو معاف نہیں کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس کے علاوہ کانگریس کے دوسرے لیڈر جو ہیں کے سی وینو گوپالن, انہوں نے بھی کہا جی کہ دوبے صاحب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, और उन्होंने जो चेयर थी लोकसभा की उनको कहा कि भई आप इनके खिलाफ कुछ इनके रिमार्क्स के खिलाफ कुछ एक्शन लें। इनका जो है कांग्रेस का आज साथ दिया है, एनसीपी की एमपी जो है सुप्रिया सूले ने, और उन्होंने एक्यूज किया दुबे को कि ये फॉल्स नैरेटिव जो है वो फैलाता है और फैमिलीज जो है उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। किसी की शादी अटेंड करने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन झूठ फैलाना बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी की आदत है कि वो फैमिलियों के खिलाफ झूठ बोलती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि वो फैमिलीज जो है व्हाट डू दे गो थ्रू जब आप इस तरह के झूठ बोलते हैं। गांधी फैमिली जो है उसने बिल्कुल वेडिंग अटेंड नहीं की थी। हां, अलबत्ता मोदी जी, उनके साथियों ने और शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे साहब ने और दूसरों ने, बहुत सारों ने मुकेश अंबानी के बेटे की शादी को अटेंड किया था। इसके साथ साथ जो इंडिया ब्लॉक थी उसके एमपीज जो थे उन्होंने आज बहुत बड़ा स्टेज किया प्रोटेस्ट एट द गेट ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग, और वो कह रहे थे कि ये जो जीएसटी को 18% तक बढ़ा दिया गया है इसको रिड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं लाइफ और हेल्थ के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट फेसेस भी नजर आए, इसके अंदर राहुल गांधी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के हेड शरद पवार, बहुत सारे लोग जो थे वो यहां पे, और भी दूसरी पार्टीज के लीडर्स वो नजर आए। और जिस वक्त ये फाइनेंस बिल पे डिस्कशन शुरू हुई उससे पहले ये एक मोर्चा जो था यहां पे वो भी निकाला गया। तो पैजन चीजें काफी गर्मा गर्म जो है वहां पे चल रही हैं। और जनाब आपको पता ही है कि सल्लू भाई को सारे भाईजान कहते हैं, बट ही इज अ ट्रू भाईजान, इसलिए कि बॉलीवुड में जो भी कभी भी किसी को मुश्किल होती है तो सल्लू भाई जो है वो आगे आगे आ जाते हैं।